बोले सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतों की, परमात्मा की और गुरुजनों की और हेतु की कृपा से हम लोग विचार कर रहे हैं कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद में द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली दसवां मंत्र के ऊपर कल विचार हुआ था। भेददर्शी की यहां पर निंदा की जाती है। जो निवृत्ति का विषय होता है उसकी निंदा की जाती है। निंदा का तात्पर्य निंदा में नहीं होता है। जो विधेय होता है उसमें साधक की प्रवृत्ति हो जावे, इसलिए निवृत्ति का विषय जो होता है उसकी निंदा की जाती है। नहीं निंदायाः निंदितुम तात्पर्यम् अपितु विधेयम् स्तोतुम्। विधेय की स्तुति के लिए निंदा की जाती है, इसलिए निंदा का तात्पर्य निंदा में नहीं होता है। यहां पर भेद दर्शन करने वाले की निंदा की जाती है। इसका मतलब भेद दर्शन करना ही नहीं चाहिए, ये तात्पर्य यहां पर नहीं है। यदि भेद दर्शन सर्वथा निषिद्ध हो जावे तो फिर उपासना का विधान अप्रामाणिक हो जाएगा। इसलिए जगह जगह पर वेदांत में भी उपासना का विधान किया गया है और वेदांत का कोई भी वाक्य अप्रामाणिक नहीं होता है। कोई भी वाक्य विधि मंत्र नाम ध्येय निषेध अर्थवाद, तो अर्थवाद वाक्य भी प्रामाणिक होता है। ठीक इसी प्रकार उपासना विधेयक वाक्य, उपासना प्रतिपादक वाक्य वो भी प्रामाणिक होता है। इसलिए यहां पर जो भेद दर्शन करने वाले की निंदा की गई, मृत्यु हो स मृत्यु आपनोति यह नानेव पश्यति, तो जो अभेद दर्शन जो ज्ञान का निवर्तक है तो उसमें साधक की प्रवृत्ति हो जावे, उसके साधन में साधक की प्रवृत्ति हो जावे तो उत्कृष्ट साधन होता है श्रवण मनन निधिध्यासन। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो आत्मदर्शन को उद्देश्य करके श्रवणादि का विधान हुआ, उस श्रवणादि में साधक की प्रवृत्ति हो जावे, इसलिए भेद दर्शन की यहां पर निंदा की गई। इसलिए यहां पर आनंद गिरि जी महाराज लिखते हैं, जैसे स्वप्न में नानात्व नहीं होता है, नानात्व का अर्थ भेद, भेद न होने पर भी भेद का आरोप कर लिया तो आरोप करके सत्यत्व का अभिनिवेश करता है। अम मनुष्य अम अमुक, ये संसार सत्य है, सत्यत्व का अभिनिवेश करके व्यवहार करता है। जैसे स्वप्न में ऐसा जागृत में भी नानात्व का आरोप कर लिया, जैसे पर्दे में चित्रगत भेद का आरोप कर लेता है कोई, इसी प्रकार जागृत में आत्मरूपी पर्दे में भेद रूपी चित्र का आरोप कर लिया और तस्मिन तद्बुद्धि आरोप, ऐसा आरोप करने पर सत्य भासता है। तो व्यवहार तो हो जाता है, मिथ्या पदार्थ को लेकर भी व्यवहार हो जाता है। तो ऐसा व्यवहार करने वाला जगत में सत्यत्व बुद्धि और अमनुष्य इत्यादि में भी सत्यत्व बुद्धि, तो ऐसा सत्यत्व बुद्धि करने वाला अज्ञानी है, भेददर्शी, उसकी निंदा की गई है। आनग्री मारा लिखते हैं तस्य निंदितत्वात्, वो जो अज्ञानी है उसकी निंदा की गई है इस मंत्र में। इसलिए साधक को यही करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि एतावदेव जिज्ञासम आत्मतत्त्वम जिज्ञासुना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो साधक को यही करना चाहिए, इसलिए आनंदगिरी महाराज लिखते हैं जो एक रस हो, ऐसा जो ब्रह्म है, कूटस्थ ब्रह्म अपना स्वरूप, उसका साक्षात अपरोक्ष करना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि, उस ब्रह्म को आत्मरूप से जानना चाहिए, यही है लक्ष्य जीवन का। इसलिए बोलते हैं इति प्रतिपत्तव्यम, ऐसा समझना चाहिए इस मंत्र में। तो ऐसा आत्मज्ञान हो जावे ब्रह्म को आत्मरूप से, तो साधन क्या है? तो साधन तो मन ही है और कोई साधन नहीं है। यद्यपि श्रवण आदि के द्वारा ज्ञान तो होगा, लेकिन मनन निध्यासन यदि ना हो तो ज्ञान नहीं हो सकता है। तो मनन निध्यासन करने पर ज्ञान की योग्यता अंतःकरण में आ जाती है, इसलिए ज्ञान का साक्षात साधन मन को बोलते हैं। वाचस्पति मिश्रा जी, श्रवण से तो ज्ञान होगा उनका कहना परोक्ष ज्ञान, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान तो मन से होगा, इसलिए ज्ञान का साक्षात साधन तो मन ही है। तो इसी को प्रमाण मान करके वाचस्पति मिश्र जी कहते हैं ज्ञान तो मन से होगा। तो कैसा मन? तो श्रुति बोलती है देखो, मनसे वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यो स मृत्युम गच्छति य इह नानेव पश्यति। तो कहते हैं यहां पर इदम आप्तव्यम, इदम नपुंसक लिंग है, तो प्रकरण चल रहा है ब्रह्म का, और कैसा ब्रह्म? सोपाधिक ब्रह्म नहीं, निरुपाधिक ब्रह्म, क्योंकि निरुपाधिक ब्रह्म के विषय में ही नचिकेता ने प्रश्न किया था। प्रश्न यही किया था, जिज्ञासा रखी थी कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्रस्मात् कृताकृतात्, और अन्यत्र भूताच भव्याच यत् पश्यसि तद्वद। ऐसा जो तत्व है जो धर्माधर्म से रहित, धर्माधर्म के फल से भी रहित, कारण से रहित, कार्य से रहित, ऐसा जो आत्म तत्व कहने से निर्विशेष ब्रह्म हुआ। तो सविशेष ब्रह्म जिज्ञासा का विषय नहीं है, निर्विशेष ब्रह्म ही जिज्ञासा का विषय है नचिकेता का। इसलिए प्रकरण से जो प्राप्त होता है उसी का परामर्शक होगा इदम शब्द, सर्वनाम हो गया ये। इसलिए सर्वनामना पूर्व प्रधान बोधिथस्य परामर्शितम व्याकरण में नियम आता है, इसलिए यहां पर इदम शब्द से निर्विशेष ब्रह्म का परामर्शक होगा। अन्नपुंसक है इसलिए ब्रह्म भी अन्नपुंसक है। और इदमस्तु सन्निकृष्टे, इदम शब्द सन्निकृष्ट पदार्थ का बोधक होता है, इसलिए अत्यंत सन्निकृष्ट अपने अत्यंत सन्निकृष्टत्व ब्रह्म ही होगा और दूसरा नहीं हो सकता है। अब सन्निकृष्ट कैसा है, शायद आप लोगों को बताया था। सामीप्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सातिशय सामीप्य, दूसरा होता है निरतिशय सामीप्य। तो घटपटादि की अपेक्षा समीप्त हो जाएगा अपना शरीर, फिर शरीर की अपेक्षा फिर इंद्रिय ले लो, इंद्रियों की अपेक्षा मन ले लो, मन की अपेक्षा बुद्धि ले लो, तो इसमें जो है सातिशय सामीप्य है। तो निरतिशय सामीप्य तो ब्रह्म ही में होगा, अपना स्वरूप होगा। इसलिए जो अत्यंत निरतिशय समीप जो पदार्थ है अपना, उसका ज्ञान कराता है उपनिषद। इसलिए वहां पर उपनिषद में उपशब्द का अर्थ होगा। लेकिन ब्रह्म में देखा जाए, निर्विशेष ब्रह्म में, तो इसी प्रकार का सामीप्य भी नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म तो निर्गुण है, निर्धर्मा है। इसलिए निरतिशय सामीप्य धर्म भी नहीं रहता है। इसलिए यहां पर सामीप्य से क्या लेंगे, निरतिशय सामीप्य से उपलक्षित जो ब्रह्म होता है, उपलक्षित कहना पड़ेगा। जैसे काकादिकम देवदत्तस्य गृहम, देवदत्त का घर कहाँ है ऐसा पूछा किसी गांव में जाकर के, तो बोला ओ देखो कोवा जो उड़ रहा है ना, वो है देवदत्त का घर। तो वहां पर नहीं है कोवा, घर के ऊपर वहां पर नहीं बैठा है, तो नहीं बैठा है फिर भी देवदत्त का घर का ज्ञान हो जाता है, इसको कहते हैं उपलक्षण। इसी प्रकार जो है निरतिशय सामीप्य जो धर्म है ना, वो ब्रह्म में वास्तविक रहता नहीं है, है ना, इसको कहते हैं उपलक्षण। जैसे आप लक्षण करते हो भाई, ब्रह्म का लक्षण आया, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद आया जन्माद्यस्य यतः, भाई किसका लक्षण हुआ, निर्विशेष ब्रह्म का हुआ कि सविशेष का हुआ है? आपका ब्रह्म तो कारण नहीं है, है ना, अन्यत्र स्मात् कृता कृता तो बोल दिया, वो कारण भी नहीं है तो निर्विशेष ब्रह्म का लक्षण कैसे बनेगा। इसको उपलक्षण मानेंगे तो निर्विशेष ब्रह्म का होगा, धन भाई ना। इसलिए निर्विशेष ब्रह्म का भी लक्षण बन जाएगा, सविशेष ईश्वर का भी लक्षण बन जाता है, तो ऐसा समझ लो। इसलिए यहां पर इदम शब्द से निर्विशेष ब्रह्म को लिया जाएगा, वो अत्यंत समीप अपना स्वरूप, तो उसको प्राप्त करना चाहिए, आप्तव्यम प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त करने योग्य। और बोलती है श्रुति देखो मनसा, मन के द्वारा, मन के द्वारा, तो कैसा मन होना चाहिए अपना, तो यहां पर भगवान भाष्यकार लिखते हैं देखो, तो कहते हैं संस्कृतेना मनसा इदम, मन जब एकदम संस्कृत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध कैसे होगा, तो एक उपाय बताते हैं, आचार्य आगम संस्कृतेना मनसा, मनसा का विशेषण लगाते हैं। तो विशेषण नहीं लगाएंगे तो कोई भी मन हो तो ब्रह्म ज्ञान का योग्य बन जाएगा फिर, इसलिए विशेषण लगा दिया, नहीं ऐसा मन नहीं, आचार्य आगम संस्कृतेना, आचार्य आगमेना संस्कृतम, आचार्य हो गया गुरु, गुरु के पास जाकर के उपदेश ग्रहण करना पड़ता है, फिर जाकर के तात्पर्य का निर्धारण करना पड़ता है। तो ये देखो, इसलिए प्रमाणगत संशय को पहले निवर्तन करना पड़ता है, विवेक वैराग्य को तो प्राप्त कर ही लिया, गुरु के पास जाने से पहले कर लिया हो, और जाने के बाद सभी वेदांत प्रमाण का तात्पर्य एक अद्वैत ब्रह्म में ही है, ऐसा निर्धारण करना पड़ता है बार बार श्रवण करके। तो बार बार श्रवण करेंगे तो ये संशय निकल जाएगा। फिर प्रमेयगत संशय को निवर्त करने के लिए मनन बार बार करना पड़ता है, मनन बार बार करना पड़ता है। तो विपरीत भावना भी चली जावे निधिध्यासन से तो समझना चाहिए कि मन अब ज्ञान के लिए अधिकारी बन गया, योग्य बन गया। इसलिए ईश्वर कृपा भी चाहिए, ईश्वर कृपा तो है ही और जो है गुरु कृपा भी चाहिए, शास्त्र कृपा भी चाहिए। इसलिए तीनों कृपा को बोल दिया पहले है कि नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश्य विणते। इसलिए उसको तीन कृपा आप लोगों को बता दिया। जो ईश्वर जिस साधक को के ऊपर कृपा करेगा वही ज्ञान का अधिकारी बनेगा, और जो साधक ईश्वर को ही वरण करेगा ऐसा भी हो गया, और जो गुरु जिस शिष्य को वरण करेगा तो कितनी कृपा होगी, तीन कृपा होगी ना। इसलिए यहाँ पर ईश्वर कृपा तो है ही, तो इसके साथ साथ आचार्य की कृपा भी होनी चाहिए, गुरु कृपा भी होनी चाहिए। इसलिए बड़ा उपनिषद में कहते हैं, श्रुति बोलती है कि दुर्लभो विषयो त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु हो करुणाम बिना। सद्गुरु की कृपा यदि न हो तो तुमको तो वैराग्य भी नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु कृपा तो है ही, तो आचार्य की कृपा हो और शास्त्र की कृपा हो तो संशय विपरीत विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाती है। तो वही होता है ज्ञान के लिए योग्य साधन, मन हो गया। तो मन शब्द से इसी को लेना है। अच्छा तो ऐसा मन के द्वारा प्राप्त करने योग्य कौन है, तो श्रुति बोलते एवकार लगा कर, एवकार एवल निश्चय। इसलिए ध्यान दीजिए, इदम मनसा इदम एव आप्तव्यम। हालांकि इसके अर्थ महापुरुष लोग कई प्रकार से करते हैं, तो भगवान भाष्यकार ने ऐसा अर्थ किया है कि मनसा इदम ब्रह्म एव। मन के द्वारा तो परमात्मा का ही साक्षात्कार करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे अष्टांग योग को प्राप्त तो कर लिए योगी लोग, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते है ना। तो संसार को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं, तो वास्तविक स्वस्वरूप निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाए। तो कहते हैं इसका तात्पर्य जितने भी साधन करते हैं इसका तात्पर्य परमात्मा का साक्षात्कार ही है और कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने एवकार का अर्थ बता दिया कि ऐसा संस्कृत मन के द्वारा परमात्मा का ही साक्षात्कार करना चाहिए, कहने से व्यावर्त्य कौन हो गया संसार। तो ये जो परमात्मा ने मन को दिया है इसका विनियोग संसार में नहीं करना चाहिए, परमात्मा के ज्ञान के लिए ही करना चाहिए। और कुछ महापुरुष लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं कि इदम स्वस्वरूपम ब्रह्म मनसा एव, मन से ही प्राप्त करने योग्य है, अर्थात और किसी से प्राप्त होने योग्य नहीं है। कि कर्म है, उपासना है, ये सब जो है मन को शुद्ध करने के लिए, लेकिन उतने से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा है ना। तो ये जो है विविदिशा, ऐसे मन में परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो जावे, इसलिए कर्म करते हैं उपासना करते हैं। श्रुति कहती है कि नहीं, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशके। तो यज्ञ दान तब वगैरह काय के लिए करते हैं, मन में योग्यता आ जाए, परमात्मा को जानने की तीव्र इच्छा हो जाए, इसलिए महापुरुष लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार तो ऐसे संस्कृत मन के द्वारा ही होता है। तो उस परमात्मा में जो प्रतिष्ठित हो गया अद्वैत ब्रह्म में, तो उस अद्वैत ब्रह्म में ढूंढने पर भी द्वैत मिलेगा नहीं, इसलिए जो नित्य शांत है उसमें प्रतिष्ठित हो जाने पर अशांति को ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार बुद्धि यदि केंद्रित हो जावे हमारी पर्दे में, तो चित्र को ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, चित्र तो दिखेगा लेकिन पर्दे से अतिरिक्त कोई चित्र है ही नहीं, ऐसा उनको निश्चय हो जाता है। तो ये यहाँ पर अवैध दर्शन का तात्पर्य होता है। जिसको अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो ये नहीं समझना चाहिए कि दाल भात रोटी जो है दिखाई नहीं देगा, है ना। कि विषय यदि हो, मन समाहित हो, इंद्रिय हो, आप चाहो या ना चाहो, ज्ञान तो वस्तु का हो जाएगा। वस्तु तंत्रम भवेद ज्ञान, ज्ञान तो वस्तु के अधीन होता है, आपके अधीन नहीं होता है। कर्तृतंत्रम उपासन, ये बताया। वर्तमानम संबद्धवचम गृहते चक्षुरादिना, ये कुमाइल भट्ट ने बताया। वर्तमानम संबद्धम च, विषय यदि वर्तमान हो, आपकी इंद्रियों का संबंध हो, तो आप चाहो या ना चाहो ज्ञान तो हो जाए, गृहते चक्षुरादिना। इसी प्रकार जिसको अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो चक्षु खुलेगा, और थाली में यदि भोजन हो तो भोजन तो दिखेगा ही, है ना। ये मेरे शिष्य है, ये विद्यार्थी है, ये गृहस्थ है, वो तो सब दिखेगा ही। तो दिखे जाने पर भी एक ब्रह्मा से अतिरिक्त है ही नहीं वास्तविक, अर्थात बाधित हो जाएगा, इसको कहते हैं बाधित। तो बाधित अनुवृत्ति से ज्ञानी व्यवहार करता है, इसी बात को यहाँ पर लिखते हैं। तो अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर यह किंचन नाना नास्ति, ऐसा अन्न करना है। यह मतलब ब्रह्म में, उस अद्वैत ब्रह्म में मतलब अपने स्वरूप में, तो अपना स्वरूप ब्रह्म में किंचन, किंचन मतलब थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी नाना मतलब भेद, नाना शब्द का अर्थ भेद ऐसा है। तो बी शब्द से तो नए प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा, बिना, और नए करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाना। ये देखो बिना एक होता है, एक नाना होता है, ऐसा समझ लो, है ना। तो बी शब्द से ना प्रत्यय होता है तो बिना हो जाएगा, है ना। और जो है ना से नए करेंगे तो क्या बनेगा, नाना बन जाता है। इसलिए बी नाभ्याम न नौ न सह एक सूत्र होता है, उसे बिना शब्द बनेगा नाना शब्द बनेगा, नाना शब्द का अर्थ होता है भेद। तो थोड़ा सा भी भेद इस निर्विशेष अद्वैत ब्रह्म में रहता नहीं, नहीं रहता है, ये लेस मात्र। इसलिए यहां पर भगवान भाष्यकार लिखते हैं किंचन अणु मात्रम अपि, थोड़ा सा ही भेद नहीं हो, लेकिन कब, जब अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान से जब अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, जब आवरण की निवृत्ति हो गई तो विक्षेप की भी निवृत्ति हो जाएगी। तो भेद दर्शन का हेतु होता है विक्षेप, और विक्षेप का हेतु होता है आवरण, है ना। तो आवरण से विक्षेप हो रहा है, तो आवरण की निवृत्ति हो गई तो विक्षेप की निवृत्ति हो जाएगी, और विक्षेप की निवृत्ति हो गई तो भेद दर्शन की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए कह दिया कि मूल तो क्या है, आवरण, तो आवरण की निवृत्ति हो गई, अद्वैत ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान से, परोक्ष ज्ञान से नहीं, परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष ब्रह्म की निवृत्ति नहीं हो सकती है, फिर अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। तो लेकिन ऐसा ब्रह्म का साक्षात्कार जिसने नहीं किया तो उसकी निंदा करते हैं। देखो इसी में प्रवृत्त कराने के लिए, उस अद्वैत ब्रह्म के ज्ञान के साधन में प्रवृत्त कराने के लिए श्रुति यहाँ पर निंदा करती है पहले की तरह। तो मृत्यु हो सह मृत्युम गच्छति यह नानेव पश्यति, श्रुति बोलते इव नाना भेद होता नहीं है लेकिन भेद की तरह प्रतीत होता है, होना वास्तविक अलगवाद है प्रतीत होना अलगवाद है। तो मिथ्या होने पर ही प्रतीत हो जाएगा, सत्य की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पूर्व संस्कार से ही आपको भ्रांति हो जाएगी, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि पहले कहीं सत्य हो तब जा करके आपको भ्रांति हुई, ये कोई जरूरी नहीं। एक लोग ये बोलते हैं भैया रस्सी में सर्प दिखता तो सर्प कहीं सत्य होना चाहिए तब तो दिखेगा। आपने देखा है मान लीजिए जंगल में है अथवा जो है जू में देखा हो सर्प को देखा, वो तो वास्तविक हो गया ना, तब जा करके रस्सी में सर्प भी भसेगा। इसी प्रकार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या बोलते हो, मिथ्या तो तब होगा जगत कहीं सत्य हुआ हो, तो ये कोई जरूर नहीं है। पहले यदि मिथ्या दर्शन किया है तब भी संस्कार पड़ेगा, सत्य ज्ञान हो तब भी संस्कार हो जाएगा और मिथ्या ज्ञान हो तब भी आपको संस्कार हो जाएगा। संस्कार तो करेगा ही, संस्कार कौन करेगा, ज्ञान। और ज्ञान दो प्रकार का हो गया, एक जो है यथार्थ ज्ञान हो गया, दूसरा होगा अयथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ ज्ञान से भी संस्कार छोड़ेगा वो, और अयथार्थ ज्ञान से भी संस्कार कहां पर छोड़ेगा भाई, मन में छोड़ेगा, कहां पर छोड़ेगा, मन में छोड़ेगा। तो मनोगत संस्कार से पूर्व संस्कार से आपको भ्रांति हो जाएगी रस्सी में सर्प, तो नया के लोग बोलते हैं सर्प को तो देखा है पहले जंगल में, तब तो रस्सी में सर्प की भ्रांति होगी। इसमें अगर जगत भी कहीं सत्य होना चाहिए तो जाकर के ब्रह्म में जगत भासेगा, यह नया की युक्ति होती है। तो वेदांती लोग बोलते ये कोई जोर नहीं है, ये बताओ तुमने भूत को कभी देखा है क्या, नहीं देखा है ना, भूत को तुमने देखा नहीं है, लेकिन खूट में जो है आपको भूत की भ्रांति कैसे हो गई, इसलिए कोई जरूर नहीं है, संस्कार है। तो किसने बताया, आपकी माता ने बताई, तो आपकी माता ने भी नहीं देखी है, वो भी किसी से सुनी है। इसी प्रकार से ये कोई जरूर नियम नहीं है, सार्वत्रिक नियम नहीं है, अव्यभिचरित नियम नहीं है कि पहले देखा हो वास्तविक ज्ञान हुआ हो तब जाकर के कहीं आपको भ्रांति होगी, ये नियम नहीं है। इसलिए भ्रांति के लिए क्या नियम चाहिए, अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान हो और भ्रांत विषय का पूर्व संस्कार हो, समझ में ना, यही तो लक्षण क्या ना विभागन भाष्य करना पा ना, पूर्व स्मृति रूप परत्र पूर्वधिष्ट आभास, परत्र आभास इतना लक्षण है, पूरा लक्षण नहीं, परत्र अवभास अध्यास अन्यत्र अन्य भाषण अतस्मिन तद्बुद्धि, यह है सारांश। तो अतस्मिन तद्बुद्धि इतना ही अध्यास करो, तो इसके लिए क्या चाहिए, संस्कार चाहिए, है ना, कि रस्सी का सामान्य ज्ञान हो इदम के रूप से और विशेष ज्ञान ना हो रज्जु के रूप से, और सर्प का क्या चाहिए, पूर्व संस्कार चाहिए। तो पूर्व संस्कार मात्र से ही आपको जो है अधिष्ठान में भ्रांति हो जाएगी, ये कोई वास्तविक नहीं है सत्य ज्ञान हुआ हो तो। इसलिए क्या हो गया, इसलिए श्रुति बोलते इव, देखो इव भेद होता नहीं है लेकिन भेद तो केवल प्रतीत मात्र है, तो लेकिन इसको कोई सत्य समझ लिया, तो सत्य समझ लिया तो बंधन हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। तो कैसा बंधन है, तो बता दिया मृत्यु हो स मृत्युम गच्छति, मृत्यु क्या है, शरीर को मैं के रूप से समझ लेना, यही मृत्यु है, दूसरा कोई मृत्यु नहीं है, जन्म मृत्यु में कोई भेद नहीं है। तो शरीर को अहम के रूप से समझ लेना यही है मृत्यु, और ऐसा ज्ञान यदि नहीं हुआ ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञान, तो शरीर छूटेगा तो नूतन शरीर में ओम बुद्धि तो होगी ही होगी। जब तक जागृत में लौट नहीं जाते हो तब तक स्वप्न में होने वाला एक शरीर में आपका अहम तो होगा ही होगा, और आपका अहम हो गया तो शरीरगत सुख दुख धर्म तो आप चाहो या ना चाहो होगा कि नहीं, ना चाहने पर भी होगा। शरीर में आपने संबंध बना लिया तो शरीर का धर्म तो अपने में आएगा ही। अरे भाई हाथ छूओगे अग्नि में तो अग्नि तो अपना काम करेगी ही करेगी, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा। हाँ इसलिए उस दिन आप लोगों को दृष्टांत बता दिया कि चाहे मजदूर हो बिजली को छुएगा तब भी झटका तो लगेगा, चाहे इंजीनियर क्यों ना हो इंजीनियर बिजली का वो भी छुएगा तो झटका तो मरेगा। इसी बगैर वेदांत भी समझ लो जो वेदांत नहीं पढ़ा है ना वो भी यदि शरीर में अध्यास करेगा तो शरीरगत सुख दुख तो आएगा ही आएगा, शरीर का कचरा तो आएगा ही आएगा। इसी बगैर आप वेदांत सुन भी लिया लेकिन वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म का साक्षात्कार यदि नहीं किया तो ये माया रूपी जो बिजली ये तो छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी नहीं, झटका तो मारेगा। झटका क्या है? ये सुख दुख को अपने में प्राप्त करना। इसलिए यहां पर बोलते हैं मृत्यु हो स मृत्युम गच्छति, है ना, एक जन्म मरण रूपी जो धारा है इसको छोड़ दिया तो और दूसरी धारा को पकड़ लेता है। इसको कह दिया पास, पहले कहा ना विततस्य पासम, है ना, पराच कामान अनुयंती वाला, है ना, और क्या बता दिया अनुयंती वाला ते गच्छन्ति मृत्यु विततस्य पासम, ये बताता ना भैया। तो यहां पर बता दिया था कि हाँ मृत्युर्यन्ति विदितस्य पाशम, द्वितीय मंत्र में मृत्यु क्या है, यही कि अविद्या काम रूपी जो मृत्यु है इस मृत्यु का पास कौन हो गया, शरीर का संबंध। वहां पर पास का अर्थ बता दिया था पश्यते बद्धते इति पाश, जिसके द्वारा बांधा जाता है ना, बांधा जाता है जैसे गोरु को बांधते हैं, इसी प्रकार जो है कि माया रूप जो मृत्यु है ना ये बांध लेती है, कैसे शरीर में संबंध ये बना करके बांध लेती है। ये बता दिया मृत्यु हो स मृत्युम गच्छति, ऐसा कौन होगा, यह जो कोई भी हो, नाम नहीं लिया पढ़ा लिखा है कि न पढ़ा लिखा हो ऐसा नाम नहीं लिया, जो कोई भी हो, जो कोई भी हो यदि अविद्या हो उनमें तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त तो करेगा ही करेगा। यहाँ पर एवकार लगा लियो, है ना, सर्वम वाक्यम सावधारणम भवती बोलते हैं ना, इसलिए मृत्यु से मृत्यु को तो प्राप्त करेगा ही करेगा। अच्छा तो इसलिए क्या हुआ, तो बोलते हैं आगे बारहवा मंत्र में अंगुष्ठ मात्रह पुरुषो मध्य आत्मनि तृष्टति ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैत, यही आत्म तत्व है जिसके बारे में तुमने जिज्ञासा रखी, तत् वो जो जिज्ञासा है एतत् यही आत्मा है। तो कौन है भाई, देखो तो बोल दिया ये मंत्र बड़ा रहस्यात्मक है, बोलते हैं आत्मनि मध्ये अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः तिष्ठति। देखो आत्मा शब्द बड़ा विलक्षण है, एक आत्मा शब्द का अर्थ कहीं ब्रह्म में हो जाता है निर्विशेष में, और कहीं जो है भाई सविशेष में हो जाता है, और कहीं जो सूक्ष्म शरीर में हो जाता है, और कहीं जो है स्थूल शरीर में भी हो जाता है। देखो कितना अर्थ हो गए, चार अर्थ हो गए, ध्यान में रखना है ना। तो जहां पर आत्मा शब्द से निर्विशेष को लेंगे वहां पर जो है लक्षार्थ लेना पड़ेगा, आत्मा शब्द का लक्षार्थ वहां पर निर्विशेष ब्रह्म हो जाएगा। और जहां पर आत्मा शब्द से यदि ये लेते हैं तो विशिष्ट लेते हैं वहां पर लक्षार्थ नहीं वाचार्थ हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा वाचार्थ हो जाएगा। जहां पर यदि स्थूल शरीर को लेते हो सूक्ष्म शरीर को लेते हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा नहीं वाचार्थ नहीं होगा, वहां पर भी लक्षार्थ होगा गौणार्थ गौण 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 गौण। हाँ लक्षार्थ भी दो प्रकार है कि नहीं है ना। हाँ लक्षण द्विविधा शुद्धा गौणी च, दो प्रकार लक्षण होती है, एक शुद्धा लक्षण एक गौणी लक्षण। फिर शुद्धा का भी तीन भेद कर देते जानते हैं आप लोग, जहत अजहत जहत जहत। ये गौणी लक्षण क्या है, सिंह मानव कह सादृश्य विशिष्ट लक्षण गौणी लक्षण, सादृश्य विशिष्ट जो होगा उसमें लक्षण को कहते हैं गौणी लक्षण। तो यहां पर भी सादृश्य है ना, है ना, कहां पर चेतन में और अंतकरण में शरीर में भी सादृश्य है ना। तो क्या सादृश्य, वो भी चेतन है ये भी चेतन हो जाता है ना, उसके संबंध से शरीर भी चेतन की तरह मालूम पड़ता है, चेतन की तरह। इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। ये भी मुख्यार्थ नहीं है, मुख्यार्थ नहीं है, तो ये ले लो। तो आत्मा से यहां पर लेंगे शरीर 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 है ना। इसीलिए तो कहते हैं भाई अध्ययन करना है तो गुरु परंपरा से अध्ययन करो, हो गया ना, नहीं तो आपको संशय हो जाएगा। वेदांता नाम अनेकत्वात् ना संशयान बहुत तत्व, कहा कि नहीं संशय आपको बहुत हो जाएगा, क्योंकि अनेक देखो पिंडे पिंडे मतिर्वेन्ना और तुंडे तुंडे सरस्वती। जैसी जैसी बुद्धि होते है ना ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं। इसलिए परंपरा से ज्ञान होता है, इसलिए आत्मा शब्द का यहाँ पर लेंगे शरीर शरीर लिया जाएगा। तो शरीर के अंदर ये बैठा है ना, तो शरीर के अंदर बैठा है बोले अंगुष्ठा मात्र है, देखो अंगुष्ठ परिमाण वाला है ना। तो अंगुष्ठ परिमाण वाला कौन होगा, हार्द आकाश होगा, हार्द आकाश होगा, दरमियान वहां पर ऐसा है। अंगुष्ठ परिमाण की तरह हार्द आकाश है, वहां पर है अंतकण, इसको हृदय कमल इसलिए बोल देते हैं। उस हृदय कमल में वो बैठा है कौन, आत्मा परमात्मा बैठा है ये बोलते हैं। इसलिए उस पुरुष को बोल दिया अंगुष्ठ मात्र, मात्र का अर्थ परिमाण, यहां पर मात्र परिमाण। तो अंगुष्ठ परिमाण वाला कौन, आत्मा हुआ कि जो है आपका कौन हुआ, अंगुष्ठ परिमाण हार्द आकाश है, ध्यान में रखो अंगुष्ठ परिमाण वाला हार्द आकाश, उस हार्द आकाश में बुद्धि है, इसलिए बुद्धि को भी अंगुष्ठ मात्र, और उसमें जो आत्मा बैठा है ना आत्मा पुरुष, इसलिए उस पुरुष को भी बोल दिया अंगुष्ठ मात्र। इसलिए जैन लोगों को भाई भ्रांति हो गई, श्रुति बोल रहे अंगुष्ठ मात्र है, इसलिए जो है अणु परिमाण वाला हो गया है ना। किसको भ्रांति होगी, ये जी जैन को भ्रांति होगी, रामानुज वालों को भ्रांति होगी। जैन लोग बोलते हैं जहां पर जैसा जाता है ना आत्मा ऐसा परिमाण हो जाता है, चीटी में जाएगा तो छोटा हो जाएगा, हाथी में जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। छोटा कैसे हो जाएगा भाई, श्रुति बोल रही है अंगुष्ठ मात्र पुरुष, समझ में ना। इसमें रावण सिद्धांत वाले भी यही कहेंगे कि आत्मा तो एकदम छोटा है ना, कैसे अंगुष्ठ मात्र बोल दिए है ना। ऐसा नहीं, उपाधि को उपाधि अंगुष्ठ मात्र होने से उपोहित को बोल दिया अंगुष्ठ मात्र, और क्या, जैसे गोरा है मैं गोरा बोलता है तो गोरापन तो शरीर का धर्म है, तो उपहित चेतन को भी क्या बोल देता, अहम गौरा मैं गोरा हूं, है ना। ऐसा है, तो अंगुष्ठ परिमाण वाला है जो आप आपकी उपाधि है, तो उपाधि में रहने वाला हो गया पुरुष है ना। वो तो है तो पूर्ण है तो पूर्ण, लेकिन संबंध बना लिया तो अपूर्ण हो गया, संबंध बना लिया तो अपूर्ण हो गया, है तो आनंद स्वरूप लेकिन शरीर में बना लिया तो है ना क्या हो गया, दुखी हो गया, दुखी हो गया। है तो अपरिछिन्न है लेकिन संबंध परिछिन्न में बना दिया तो हो गया परिछिन्न, लेकिन स्वरूप से तो पुरुष, पुरुष मतलब पूर्ण, पूर्ण है ना, पूर्ण ही बोलते हैं, और पूरी सेते थी पुरुष ऐसा ही बोलते हैं भी। ये शरीर में जो है ना साक्षी रूप से रहता है, इसलिए 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 इसको क्या बोल दिया, पुरुष बोल दिया, और पूर्ण होने से ही पुरुष बोलते हो, पूर्ण मद पूर्ण विदम। तो ये पुरुष रहता है, तिष्ठतिवल रहता है, रहता है ना, तो रहता कैसे, जैसे कि सूर्य रहता है जल में, सूर्य रहता जैसे जल में ऐसा रहता है, वास्तविक रहता नहीं है। हाँ ऐसा समझ लो, शरीर में भासना ही आत्मा का रहना है, नहीं तो रहेगा कैसे भाई, सत्य मिथ्या में कैसे रहेगा, सत्य मिथ्या में रहना मतलब मिथ्या में भासना, जैसे सर्प भासता है रस्सी में, कि रस्सी भासता है सर्प में, कौन किस में है, हमने पूछा रस्सी में सर्प है कि सर्प रस्सी में है, बड़ा कठिन है कि नहीं। कौन किस में भैया, इसी प्रकार देखो संसार में परमात्मा है कि परमात्मा में संसार है, क्या परमात्मा संसार में है कि जो है संसार परमात्मा में है, हमने वो थोड़ी पूछा, कौन किया है नहीं पूछा हमने, परमात्मा में संसार है कि संसार में परमात्मा, ये हमने पूछा, कौन नहीं है तो कहाँ है फिर परमात्मा संसार नहीं तो कहाँ संसार भाषणा की बात हमने थोड़ी पूछा, कहाँ पर इतना पूछा हमने अरे भाई दोनों होते हैं, क्या होते हैं है ना, दोनों होते हैं, परमात्मा में संसार है ये भी सही है, और परमात्मा संसार में ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। इसको कहते हैं अध्यास, क्या कहते हैं, अध्यास बोलते हैं है ना, को परमात्मा संसार में रहेगा किस रूप से है ना, संसर्ग तैयार रहेगा, इसको कहते हैं संसर्ग रूप से, उसका संबंध झूठा होकर के रहेगा, समझ में, इसको कहते संसार का अध्यास बोलते है ना, लेकिन ये जो संसार कैसे रहेगा, स्वरूप से कल्पित होकर रहेगा, परमात्मा में संसार कल्पित होकर रहेगा, जैसे पर्दे में अग्नि रहेगी, समझ ना, लेकिन परमात्मा संसार में कल्पित रूप से नहीं रहेगा, समझ में ना, उसका कल्पित संबंध को लेकर के रहेगा, ये माना जाता है, चलिए दोनों चलेगा, इसलिए अयम सर्प भी कहोगे, सर्प अयम भी कहा जाता है, होता है कि नहीं, ऐसा समझ लो, इसलिए शरीर में रहना मतलब क्या है, शरीर में भासना ही रहना है आत्मा का, नहीं तो कैसे रहोगे भैया, भाई आप रहते हो सपनों में अनेक शरीर है कि नहीं, तो उस शरीर में आप हो कि नहीं हो, तो कैसे रहे आप, वो तो मिथ्या है, आप तो सत्य हो, तो कैसे रहे, हाँ है ना, रहना इसी प्रकार, उस शरीर में आप भास रहे हो मैं के रूप से, यही आपका रहना, तो रहना कैसे होगा फिर, ऐसे में ना, इसी प्रकार परमात्मा संसार में कैसे रहता है, अस्थि के रूप से रहता है, ये समझ लो, अस्थि के रूप से रहेगा, अधिष्ठान के रूप से रहेगा, रहना मतलब है ना, चलिए अशरीरम शरीरेशु, कहा कि नहीं कहा, अशरीरम शरीरेशु, शरीर शरीर में ये परमात्मा कैसे रहेगा, अशरीर होकर रहेगा, मतलब अधिष्ठान होकर के रहेगा, यही रहना है। तो आत्मनि तिष्ठति, शरीर के अंदर बुद्धि है और बुद्धि के अंदर परमात्मा है, अधिष्ठान के रूप से, बुद्धि का अधिष्ठान के रूप से रहेगा वो, बुद्धि मुझे सत्ता मिल रही है ना, वो सत्ता है परमात्मा, वो सत्य के रूप से अधिष्ठान के रूप से रहेगा, ये देखो अस्थि को लेकर बोल दिया, और रहेगा कैसा, चेतन के रूप से रहेगा, हाँ बुद्धि में जो चैतन्य है ना, वो चैतन्य किसका है, परमात्मा का है, इसलिए सत और चिद बोल दिए। और आनंद का अध्याय सर्वत्र नहीं होता है, समझ में ना, सत चित आनंद का है कि नहीं। इस सचित का तो तादात्म्य सर्वत्र रहेगा, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जहां पर सत न हो, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जहां पर चित न हो, लेकिन आनंद सर्वत्र नहीं होता है ना। इसलिए सत और चित का तो है ना अभ्यास तो सर्वत्र होगा, लेकिन आनंद का नहीं होता है, आनंद का नहीं होगा। इसलिए दुग में भी देखो, दुग में भी अस्थि है और दुग में भी चित है कि नहीं। इसलिए दुख है, मुझे दुख हो रहा है ये बोलते हो, और भान भी हो रहा है दुख का, है ना। इसलिए दुख में जो सत्ता है ना, वो आत्मा की है, परमात्मा की। और दुख में जो दुख जो भास रहना है ना, वो भाषण जो है ना, भान जो है वो किसका है, चित का हो गया। लेकिन दुखम प्रिय ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है? नहीं होता है क्यों? अनादिकाल से नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, इसलिए भ्रांति नहीं होती है। तो भ्रांति के लिए, अध्यास के लिए क्या चाहिए? संस्कार चाहिए। और संस्कार के लिए क्या चाहिए? पूर्व में अनुभव चाहिए। तो अनादिकाल से दुखम अस्ति, दुखम भाति है ना, इस प्रकार की जो भ्रांति अनादिकाल से है, कब से नहीं बोल सकते है ना। तो इसीलिए अभी भी हो रहा है, दुख भास रहा है, दुख है, ऐसे हो रहा है कि नहीं, अहम दुखी ऐसे हो रहा है। लेकिन है ना, दुखम प्रिय ऐसा नहीं होता है कभी भी। क्यों नहीं होता? पहले नहीं हुआ है कभी, पहले नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा। पहले अनादिकाल से रस्सी में सर्प भास रहा है, इसलिए अभी भी सर्प भास रहा है। पहले भी सर्प नहीं भासता तो अभी भी नहीं होता है। इसी और पहले से दुख है ना, और दुख का भान अनादिकाल से हो रहा है, इसलिए अभी भी भ्रांति हो रही है। इसी प्रकार जब दुखम प्रिय पहले कभी नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी नहीं होगा, समझ में ऐसा समझ लो। तो ऐसा परमात्मा कैसा है भी, उसका क्या विशेषता है उसकी? तो बोल दिया भूत भव्यस्य ईशानम। भूत हो गया काल है ना, और भव्य कौन हो गया? भविष्य। और कौन आ गया? वर्तमान। इसको कहते उपलक्षण। तीनों काल का वो शासक, शासक है, शासक है। और काल से सब ले लो उपलक्षण, सभी संसार, सभी संसार का वो ईशाना मतलब शासन करने वाला है ना, सभी संसार का शासन करने वाला ऐसा जो परमात्मा है, उसका साक्षात्कार जिसने किया हो जीते जी, तो बोल दिया ततः न बीजुगुप्सते। तो किसकी रक्षा करेगा भाई? परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो परमात्मा से कोई अतिरिक्त हो तब तो रक्षा करेगा, हो गया ना। जैसे पर्दा थोड़ी रक्षा करता है कि अग्नि से, पर्दे में अग्नि भास रही है, पर्दा रक्षा क्यों करेगा? क्योंकि अग्नि तो कल्पित हो गया, पर्दा से अग्नि भिन्न है ही नहीं। इसलिए अगर ब्रह्म का साक्षात्कार जिसको हो गया, उनको कैसा भान होगा? भले ही बोलेगा कि अमुक है अमुक है, लेकिन ये उनको निश्चय होता है कि सर्वम कलुइदम ब्रह्म। इसलिए है ना कि द्वैत होता है भय का हेतु। अब द्वैत रहा नहीं, द्वैत नहीं रहा मतलब द्वैत दर्शन नहीं रहा, ये समझ लो। हाँ, द्वैत में सत्यत्व बुद्धि ये होता है भय का हेतु, द्वैत भय का हेतु नहीं होता है। तो द्वैत में सत्यत्व बुद्धि नहीं रही, इसलिए भय भी नहीं रहेगा। और भय यदि न हो तो रक्षा भी क्यों करेगा? वो रक्षा करने की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसा जो आत्म तत्व है तुम्हारा स्वरूप है, जिसके विषय में तुमने जिज्ञासा की थी, एतद्वैत। तो आगे का विचार कल करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।